विश्वनाथ बाथरूम से बाहर आया तो कमरे में गहरी खामोशी फैली हुई थी। श्यामली अभी भी बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा। सब ठीक है? उसने धीरे से पूछा। विश्वनाथ ने केवल हूँ कहा और अलमारी के पास जाकर अपनी घड़ी उतारने लगा। उसका छोटा सा जवाब भी श्यामली के दिल में चुभ गया। वो 2 साल से उसके साथ थी, उसकी चुप्पी और उसके शब्दों के बीच का फर्क समझती थी। आज वो जानबूझकर दूरी बना रहा था। कुछ देर बाद दोनों बिस्तर पर लेट गए। कमरे की लाइट बंद थी, बस खिड़की से आती चांदनी कमरे में हल्की सफ़ेद रोशनी बिखेर रही थी। श्यामली अपनी तरफ लेटी हुई थी और विश्वनाथ दूसरी तरफ मुंह किए पड़ा था। दोनों के बीच कुछ इंच का फासला था, लेकिन आज वो फासला उसे कई मील लंबा लग रहा था। उसने धीरे से करवट बदली, नज़रें विश्वनाथ की पीठ पर टिक गईं। कितनी अजीब बात थी, सालों साथ रहने के बाद भी कभी कभी इंसान अपने सबसे करीब वाले को समझ नहीं पाता। उसका मन हुआ कि उसका हाथ पकड़ ले, पूछे कि आखिर कब तक ये सब चलेगा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। कुछ मिनट बाद उसने हिम्मत करके थोड़ा करीब सरकने की कोशिश की, बस इतना कि उसका कंधा विश्वनाथ के कंधे को छू जाए। लेकिन तभी विश्वनाथ हल्का सा दूसरी तरफ खिसक गया, जैसे अनजाने में नहीं, जानबूझकर। श्यामली का दिल कसकर सिमट गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी जगह वापस आ गई। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। इतने वर्षों में पहली बार उसे अपने ही पति से इतनी दूरी महसूस हुई थी। विश्वनाथ की आंखें बंद थीं, लेकिन वो भी सो नहीं रहा था। उसे महसूस हो गया था कि श्यामली करीब आई थी और उसने खुद को दूर कर लिया था। दिल के किसी कोने में अपराध बोध भी था, लेकिन गुस्सा उससे बड़ा था। वो अपने मन के सवालों से लड़ रहा था। श्यामली अपनी तरफ चुपचाप लेटी रही। आखिरकार थकान ने उसे घेर लिया, उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद उसकी सांसें धीमी और नियमित हो गईं। वो सो चुकी थी। विश्वनाथ ने तब धीरे से करवट बदली। उसकी नज़र श्यामली पर पड़ी। सोते हुए भी उसके चेहरे पर वही सादगी थी, वही मासूमियत, वही अपनापन। एक पल के लिए उसके भीतर का सारा गुस्सा कमज़ोर पड़ गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर दूसरी तरफ देखने लगा। रात यूं ही बीत गई। सुबह की हल्की सुनहरी धूप खिड़की से कमरे में प्रवेश कर रही थी। पक्षियों की आवाज़ें दूर से सुनाई दे रही थीं। श्यामली की आँख खुली। कुछ सेकंड तक वो यूं ही छत को देखती रही, फिर उसकी नज़र बगल में सोए विश्वनाथ पर गई। वो अभी गहरी नींद में था और जाने क्यों उसे देखकर श्यामली की आंखें भर आईं। लात की दूरी अभी भी उसके दिल में चुभ रही थी। वो धीरे से उठकर बैठ गई। कुछ पल तक बस उसे देखती रही। उम्र ने उसके व्यक्तित्व में परिपक्वता जोड़ दी थी, लेकिन उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व आज भी वैसा ही था। चौड़ा माथा, मजबूत चबड़ा, गहरी और गंभीर आंखें जो इस समय बंद थीं। चेहरे पर एक अलग ही गरिमा थी, ऐसी गरिमा जो वर्षों की जिम्मेदारियों और संघर्षों से बनती है। उसके चेहरे की हर रेखा जैसे एक कहानी कहती थी, घर की, परिवार की, प्यार की, त्याग की, और शायद उन दर्दों की भी जिन्हें वो कभी किसी से कह नहीं पाया। श्यामली के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने बहुत धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छुआ, फिर उंगलियां उसके गाल तक चली गईं। स्पर्श में इतना अपनापन था कि जैसे वो अपने ही दिल को सहला रही हो। उसकी आंखें नम हो गईं। आपको मैं अच्छे से जानती हूँ, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। आप जितना दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा महसूस करते हैं। विश्वनाथ नींद में था या शायद सोने का अभिनय कर रहा था, श्यामली को नहीं पता था। वो बोलती रही, मुझसे दूर रहकर आप बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप जितना दर्द मुझे दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खुद सह रहे हैं। उसकी आवाज भर्रा गई। लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगी, बहुत जल्दी। मैं आपको फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहती हूँ। उसने उसके माथे को प्यार से छुआ। दिल में प्रेम भी था और दर्द भी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उनके बीच ऐसा क्या आ गया है जो धीरे धीरे उन्हें दूर कर रहा है। कुछ देर तक वो यूं ही बैठी रही, फिर खुद को संभाल कर उठ गई। नीचे पूरे घर की जिम्मेदारी उसका इंतजार कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद जब वो तैयार होकर नीचे पहुंची तो हमेशा की तरह पूरा घर धीरे धीरे जागने लगा था। रसोई में चाय बन रही थी, नौकर इधर उधर काम में लगे हुए थे, रत्ना देवी पूजा की तैयारी कर रही थी, सुषमा देवी बरामदे में बैठी सुबह की चाय पी रही थी। श्यामली सबको देखकर मुस्कुरा दी, जैसे रात का दर्द उसने अपने भीतर कहीं छिपा दिया हो। उसकी यही आदत थी, खुद टूटती रहती थी लेकिन परिवार को कभी टूटने नहीं देती थी। कुछ देर बाद विश्वनाथ भी नीचे आया। सफेद शर्ट और गहरे रंग की जैकेट में हमेशा की तरह प्रभावशाली लग रहा था। उसकी मौजूदगी भर से घर का माहौल बदल जाता था। श्यामली की नज़र अनायास ही उसकी तरफ उठी। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली, लेकिन अगले ही क्षण विश्वनाथ ने नजरें हटा ली। श्यामली के दिल में फिर हल्की टीस उठी। फिर भी उसने मुस्कुराकर पूछा, चाय लाऊं?
विश्वनाथ ने बस सिर हिला दिया और उसी क्षण शामली ने मन ही मन एक फैसला किया। चाहे जितनी गलतफहमियां हों, चाहे जितनी दूरियां आ जाएं, वो हार नहीं मानेगी, क्योंकि उसके लिए ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, ये उसकी पूरी दुनिया था और अपनी दुनिया को टूटते हुए देखने की ताकत उसमें नहीं थी। आर्यन अपने कमरे में अकेला खड़ा था। खिड़की से आती सुबह की धूप कमरे में फैल रही थी। उसके हाथ में अदिति की एक तस्वीर थी। वो कुछ पल तक तस्वीर को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बिस्तर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। पता नहीं क्यों, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन अदिति, मैं ना चाहते हुए भी शामली की ओर खिंचता जा रहा हूँ। उसकी आंखों में बेचैनी उतर आई। मैंने बहुत कोशिश की है खुद को समझाने की, बार बार खुद से कहा कि ये गलत है, कि मुझे ऐसा महसूस भी नहीं करना चाहिए। वो कुछ क्षण चुप हो गया, फिर तस्वीर को देखते हुए बोला, लेकिन हर बार जब वो सामने आती है, पता नहीं क्यों मन कमजोर पड़ जाता है। उसने अपना सिर पीछे टिकाया और आंखें बंद कर ली। दिल और दिमाग के बीच एक अजीब संघर्ष चल रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर दृढ़ता आ गई। नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा, उसने धीरे से कहा, मैं पापा को दुख नहीं दे सकता। विश्वनाथ का चेहरा उसकी आंखों के सामने उभर आया। वो जानता था कि उसके पिता पहले ही कई बातों को लेकर भीतर से परेशान है। वो पहले ही मेरे और शामली के पुराने रिश्ते की वजह से बहुत कुछ सह चुके हैं। मैं उनकी तकलीफ और नहीं बढ़ा सकता। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। और अतिथि, तुम्हारे साथ भी मैं अन्याय नहीं कर सकता। कमरे में फिर खामोशी छा गई। आर्यन खिड़की के बाहर देखने लगा। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि कुछ जंगें दूसरों से नहीं, खुद से लड़नी पड़ती हैं। और उसने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे उसके दिल में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, वो अपने परिवार की खुशियों के बीच कभी नहीं आएगा।